सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं लोयालोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिणं वीरं नमिऊणखेतसुत्तं जहो वये संपयासेमो। यह श्री विसेन आचार्य रचित दोहला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह अपनी चौथी पुस्तक चल रही है अभी, खेतानुगम यानी क्षेत्रानुगम, उसमें हम 29 पृष्ठ पर आए हुए हैं। यहाँ क्षेत्र जब बताते हैं तो जीव जिस क्षेत्र में रहता है उसको स्वस्थान कहते हैं, और फिर उसका जहाँ सोना बैठना परिभ्रमण आदि जो है अन्य भी क्षेत्रों में जाता है तो उसको विहार व स्वस्थान कहते हैं। तो स्वस्थान के दो भेद, स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान। उसके बाद समुद्घात के हमने 7 भेद देखे थे, तो 2 ये और 6, 7, 9 और एक उपपात यानी जन्मने का एक पहला समय, तो इस तरह से 10 ऐसे भेद हो गए। तो 10 अपेक्षाओं से एक क्षेत्र का वर्णन करेंगे, उसमें से यहाँ केवली समुदाय की बात कल चल रही थी उसका विशेषार्थ हम देख रहे हैं 29 पृष्ठ पर जो विशेषार्थ लिखा है। लिखते हैं पूर्व शरीर के बाहल्य रूप, बाहल्य यानी मोटाई उसकी, पूर्व शरीर के बाहल्य रूप विद कितना मोटा है ऐसा, अथवा पूर्व शरीर से तिगुने बाहल्य रूप, जब पद्मासन है तो उतनी ही जो होगी विर्थ जैसे बाहुओं की, और बैठते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं तो तिगुना हो जाता है उसका विस्तार, तिगुना हो जाता है। तिगुने बाहल्य रूप दंडाकार से ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि जब खड़कासन से विराजमान केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस अवस्था में पूर्व शरीर के बाहल्य से कुछ अधिक, वो कुछ हुआ है कुछ अधिक तिगुनी परिधि वाले, परिधि हम देखते हैं तो वो अबाउट 3 गुना है, बिल्कुल स्थूल अपेक्षा से तिगुना कहलाती है, तिगुनी परिधि वाले दंडाकार आत्म प्रदेश होते हैं। पूर्व शरीर ने अभी जो उनके आत्म प्रदेश फैले हैं, मूल शरीर से बाहर आ गए ना, तो मूल शरीर की बात, पूर्व शरीर ने मूल शरीर केवली का शरीर जो औदारिक शरीर उसकी बात चल रही है। अब बाहर फैलेंगे तो कौन सा शरीर जाएगा साथ में, तेजस कर्मा जाएगा कि नहीं जाएगा,
जाएगा।
आप क्या कहते हैं, आत्म प्रदेश फैलेंगे तो तेजस कर्मा शरीर फैलेगा कि नहीं फैलेगा,
फैलेगा
फैलेगा ना, हाँ जरूर फैलेगा। एक बार वो जयपुर के शिविर में ऐसी तत्व चर्चा में पूछा था किसी ने, तो किसी ने बताया नहीं फैलते, तो नहीं फैलेंगे तो उतने आत्म प्रदेशों को मोक्ष हो गया ऐसा मानना पड़ेगा। क्या है ना, तो वो कार्मण तेजस भी फैल जाते हैं। तो ये पूर्व शरीर यानी मूल शरीर औदारिक शरीर की बात, क्या
ये जो
आपका प्रश्न ऐसा है समुदाय होता है वो कर्मों की स्थिति, वो अकेले केवली समुदाय के बारे में है। कर्मों की स्थिति, हाँ, केवली समुदाय क्यों होता है और कब होता है? तो 13वें गुणस्थान के अंत में एक अंतर्मूर्त बाकी है तब। और क्यों होता है? तो नाम गोत्र वेदनी और यहाँ आयु, आयु के निषेकों में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, उतनी तो स्थिति जितनी है उतने ही समयों की रहेगी। अब एक अंतर्मूर्त बाकी है ना आयु का, तो नाम और गोत्र और वेदनी वो ज़्यादा लंबे काल के हैं, तो उनको समान स्थिति वाले करने के लिए। तो समुद्घात में क्या होता है? तो असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, उनकी स्थिति घट जाती है आयु छोड़कर अन्य तीन कर्मों की, तो वो सबकी समान स्थिति हो जाती है। ये केवली समुदाय में स्थिति समान के लिए वो हो जाता है। करते हैं ऐसी बात कुछ नहीं है, वो सहज ही सब हो जाता है। करने धरने की बात तो जैन शासन में है नहीं, वो कहेंगे जरूर करना नियोग में कहेंगे इसने ऐसा किया, उसने कर्मों का उपशम किया, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा है। हाँ अश्विन वे कहते सुबह तो बोल सकते हैं, शाम को नहीं बोल सकते। बोलो कभी भी, बोलने में मना ही नहीं है, मानो मत। सुबह भी बोलते हो तो मानो मत नहीं तो सुबह मानने में भी छूट ले लोगे तो नहीं चलेगा शाम को यहाँ द्रव्य नियोग चलते है ना, प्रवचन सार समय सार वगैरह। देखो अब कहते हैं ये त्रिगुणी परिधि वाले दंडाकार आत्म प्रदेश होते हैं, और तथा यानी वो खड़गासन वालों की बताएं। और जब पद्मासनस्थ केवली भगवान समुद्घात करते हैं तब पूर्व शरीर से त्रिगुणे बाहल्य की कुछ अधिक त्रिगुणी परिधि वाले दंडाकार आत्म प्रदेश निकलते हैं, यानी बैठते हैं तो वो फैलाव ज़्यादा है उसका, त्रिगुणा है, तो उसकी परिधि भी उससे त्रिगुणी हो जाएगी। इसलिए धवलाकार ने पूर्व शरीर बाहर लेना तत् त्रिगुण बाहर लेना वा ऐसा विशेषण दिया है, यानी पूर्व शरीर के बाहल्य इतने या उससे त्रिगुणे बाहल्य इतने, ऐसे दो ऑप्शंस बताए। अब जो अन्य जो समुद्घात है उसकी बातें करेंगे। 11 नंबर के ऊपर गाथा पढ़ते हम, वेदन कसाय वेयो वियोय मरणंतियो समुद्घादो तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीनम तु। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, छठा आहारक समुद्घात और सातवां केवली समुद्घात। इस प्रकार समुद्घात सात प्रकार का है। ये क्षेत्र की बात चल रही है, समुद्घात करता है तो जीव का क्षेत्र वो बड़ा क्षेत्र व्यापता है, इसलिए यहाँ समुद्घात की बातें उठाई है। अपना विषय तो क्षेत्र संबंधी चल रहा है, तो जितने क्षेत्र में जीव का गमन होता है उसकी बात चल रही है। समुद्घात अवस्था में भी जीव के प्रदेश बाहर जाते हैं तो वहाँ भी उसमें क्षेत्र की अपेक्षा उसको भी कहेंगे कि वेदना समुदाय में इतना त्रिगुणा क्षेत्र व्याप्ता है, या मानांतिक समुदाय में इतने असंख्यात योजन फैल जाता है, आदि बातें वहाँ बताएंगे। आपका प्रश्न है मानांतिक समुदाय आयु बंधने के बाद कभी भी होगे, होगा कि मरण के पहले होगा थोड़ा? हाँ, तो आयु के अंत में मरण के एक अंतर्मूर्त पहले तभी होता है मानांतिक समुदाय, क्योंकि मानांतिक समुदाय का काल भी हमने एक अंतर्मूर्त देखा है, तो अंतर्मूर्त पहले होगा वो। ऐसा नहीं कि अभी समझो किसी ने 81 वर्ष की आयु वाले ने 54वें वर्ष में उसने आयु बांधी है तो वो 55-60 वर्ष में कभी भी मानांतिक समुदाय करेगा, ऐसी नहीं है, वो बस एक अंतर्मूर्त पहले ही हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो उन्होंने बता दिया, आयु उनका प्रश्न ऐसा था आयु बंधने के बाद कभी भी हो सकता है या मरण के पहले पहले ही होता है, तो मरण से थोड़ा पहले ही होता है आयु बंधी, इसलिए कभी भी हो ऐसी बात नहीं है। अब एक बात रहेगी उपपाद की, सात प्रकार के समुद्घात, दो प्रकार के स्वस्थान, कौन से दो प्रकार के स्वस्थान? स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान, ये नौ हो गए। अब दसवां प्रकार जो है उपपाद, उसकी बात अब बता रहे। उपपाद एक प्रकार का है, यानी वो जन्म लेने का प्रथम समय, और वह भी उत्पन्न होने के पहले समय में ही होता है, ही लगाया, एक समय मात्र का है वो। उपपाद में रुजुगति से उत्पन्न हुए जीवों का क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, वहाँ क्षेत्र की अपेक्षा है। तो रुजु यानी सीधी गति से उत्पन्न हुआ है, तो उसका क्षेत्र यानी उस जीव का जो कुछ कितनी जगह अवगाहना उसकी छोटी होती है उस समय, उसका क्षेत्र अल्प है सबसे, क्योंकि इसमें जीव के समस्त प्रदेशों का संकोच हो जाता है। समस्त प्रदेशों का संकोच यानी अभी यहाँ इस समय मरा, अगले समय पहुंचा, और फिर वो सभी आत्म प्रदेश में जैसे इतना यहाँ से यहाँ तक उस पहले फैले और एकदम समेट गए, तो उसका संकोच होता है, तो तभी उसकी अल्प अवगाहना है। विग्रह तीन प्रकार का है। विग्रह गति किसे कहते हैं? तो विग्रह शब्द के तीन अलग अलग अर्थ होते हैं। विग्रह का अर्थ देह भी होता है, तो नया देह धारण करने के लिए जो गमन होता है उसको भी विग्रह गति कहते हैं। विग्रह का एक अर्थ होता है मोड़, टर्न, तो जो मोड़ सहित गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। और जब मोड़ वाले को विग्रह कहेंगे तो बिना मोड़ वाले की जो इशु गति है, रुजु गति है, उसको अविग्रह कहेंगे। तत्वार सूत्र में सूत्र है ना अविग्रह, तो वहां उसको अविग्रह का देह एक मोड़ एक है विग्रह, और तीसरा इन्हें वक्रता, वक्र है वही मोड़ ही। नया देह धारण करने के लिए जो होता है, हाँ। और तीसरा अर्थ है विग्रह का कि उसमें ग्रहण नहीं होता है, नौकर्म वर्गना का ग्रहण नहीं होता है, उसको भी विग्रह गति का है। कर्णानियोग परिचय है ना मेरी पुस्तक, उसमें 19 पृष्ठ पर ये विग्रह गति संबंधी डिटेल चर्चा की है, तीनों अर्थ भी वहां बताए। हाँ हाँ, वो तो हमने कहाँ से लिया है पुस्तकों में से, तो अपने गोमटसार में भी उसकी चर्चा हुई थी। देखो विग्रह अभी है, विग्रह में जो मोड़ वाले जो है उसमें तीन प्रकार है, एक मोड़ वाले, दो मोड़ वाले, तीन मोड़ वाले। तो विग्रह तीन प्रकार का है, पाणिमुक्ता, लांगलिक और गोमूत्रिक, ये उसके नाम लिए। इनमें से पाणिमुक्ता गति एक विग्रह वाली होती है, यानी एक मोड़ वाली, तो उसके लिए समय कितने लगेंगे? दो समय। पहला समय कारमान का योग वाला अनाहारक होगा, दूसरे समय में वह पहुंचता है तो वहां शरीर संबंधी परमाणु का ग्रहण चालू हो जाता है। यानी मोड़ के पहले पहले वह अनाहारक यानी नौ कर्म के परमाणु नहीं लेता है, और दूसरे समय में पहुंचने का समय है तो वहां ले लेता है। तो पाणिमुक्ता एक मोड़ वाली, विग्रह, वक्र और कुटिल ये सब एकार्थवाची नाम है, उसी को मोड़ कहा। लांगलिका गति दो विग्रह वाली होती है, और गोमूत्रिका गति जितने मोड़, एक मोड़ है तो दो समय, दो मोड़ को तीन समय, और तीन मोड़े वाले को चार समय। दो मोड़ है तो दो समय तक अनाहारक, दो मोड़ है तो, दो मोड़ है हाँ, यानी दो मोड़ वाला तीन समय वाला है, तो दो पहले दो समय तक अनाहारक है। ये मोड़ा क्यों लेता है, मोड़ क्यों लेता है टर्न? आकार है, मगर उसके लिए रूल क्या है पहले में, पहले कि आकाश की सीधी श्रेणी में जाता है वो, ऊपर नीचे या पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये जो मुख्य दिशाएं है उन दिशाओं में गमन होगा। तीर्छा यानी आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान्य आदि तीर्छा या कहीं भी अन्य दिशाओं में उसका गमन नहीं होता है। हम चाहे जैसे इधर उधर दौड़ते हैं उसकी बात नहीं है, ये विग्रह गति में जो है वो जो गमन है, एक शरीर छोड़कर अन्यत्र जब जाता है तब इसी रूल से उसका गमन होता है। जैसे शतरंज में वो हाथी तो सीधा ही चलेगा चाल, हाँ, और ऊंट है तो तिरछा चलेगा, तो यहाँ तो सीधी आकाश पंक्ति जो होती है उसमें सीधी पंक्ति में इसका गमन होता है। तो कहीं ऐसा प्रतर क्षेत्र है ऐसा सीधा, और यहाँ का जन्म मरा हुआ यहाँ जन्मा है तो सीधा सीधा जाएगा। अब मान लेते इसे तिरछे इस एंगल में जन्म लेना है तो पहले सीधा जाएगा और फिर एक टर्न राइट एंगल में लेगा, वो भी टर्न राइट एंगल में होगा उसका। तो कोई ऐसा एक सतह एक लेवल पर होता क्षेत्र, जैसे पेपर पर हम देखते कहीं से भी कहीं भी पहुंचने में या तो सीधा पहुंच सकता है या एक मोड में तो कहीं भी पहुंच सकता है एक लेवल पर, एक प्रदेश लेवल पर बात हो तो, बराबर। अब जो क्यूबिकल है तो क्यूबिकल में भी कहीं भी पहुंचना है उसको, जैसे बक्सा हम देखते हैं तो कहीं भी पहुंचना है तो दो मोड़े में काम हो जाएगा। अभी मान लेते यहाँ है और जीव यहाँ जन्मने वाला है तो सीधा ऊपर जाएगा या ऐसा करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा फिर एक टर्न लेगा यहाँ पर आ गए, फिर और एक टर्न इस तरह से पूर्व पश्चिम अंदर जाएगा। तो दो मोड़ में ये ऐसे क्यूबिकल कोई होगा चौरस क्यूबिकल तो दो मोड़ में कहीं भी पहुंच सकता है, परंतु लोकाकाश का हमने देखा शेप बीच में ऊपर एक राज्य है तो बीच में पांच राज्य, फिर एक राज्य, फिर नीचे सात राज्य। अब मान लेते नीचे सात राज्य वाले प्रदेश में वहाँ कोई अंत में रहता है कोई जीव, ये पांचों प्रकार के हम देखते हैं ना सूक्ष्म जीव या कोई भी जो हो। हाँ यहाँ से अभी इसको यहाँ वायु का एक लेते हैं यहाँ जन्म नहीं है उसको तो कैसा जाएगा, पहले सीधा जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, हाँ आलोक लोकाकाश के बाहर होकर नहीं जा सकता। तो पहले ये एक राज्य वाले उतने क्षेत्र में आके अंदर फिर सीधा गमन होगा, फिर यहाँ जन्म है तो ऐसा होगा, परंतु ये अंदर डेप्थ में है यहाँ समझो मान लेते हैं सात राज्य वाले तो फिर और एक मोड़ लेना पड़ेगा उसको, इसलिए तीन मोड़े में वो कहीं भी पहुँच जाए, किसी जीव को तीन मोड़े से ज्यादा मोड़े की जरूरत नहीं पड़ती। ये तीन विग्रह वाले होते, इनमें से मारणांतिक समुद्घात के बिना विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के, एक कंडीशन क्या बोल रहे हैं बताएं, जिसके मारणांतिक समुद्घात नहीं होता और ऐसे विग्रह गति में से वो जाता है अन्य भाव में, उसमें से भी विग्रह गति में से कौन सी वाली, रुजु गति, रुजु यानी एक समय वाली बिना मोड़ वाली गति, रुजु गति से उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में होने वाली अवगाहना के समान ही अवगाहना होती। किसकी बात चल रही है, कि उपपाद जन्म की बात चल रही है, उपपाद क्षेत्र की, उपपाद वाले का जो क्षेत्र है वो सबसे कम है और उसमें भी कम किसका है, तो रुजु गति से जाने वाले जीव का, वो भी बिना मारणांतिक समुद्घात वाले के। प्रथम समय में होने वाली अवगाहना के समान ही अवगाहना होती है, ये आगे पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा। देखो विशेषता केवल इतनी है कि दोनों अवगाहनाओं के आकार में समानता का नियम नहीं है। दो बातें बताई है मैंने, एक मारणांतिक समुद्घात के बिना विग्रह गति से उत्पन्न हुए वाले जीवों के, ये एक जीव लिया, कौन सा, विग्रह गति यानी मोड़ वाले गति से उत्पन्न होने वाला जीव, परंतु कंडीशन क्या है, बिना मारणांतिक के, सभी जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं ऐसा नहीं, तो जो कोई जीव मारणांतिक समुद्घात जिसने नहीं किया है ऐसा जीव मरकर विग्रह गति से यानी एक दो या तीन मोड़े वाली गति से अन्यत्र जन्मा, दो प्रकार के जीवों में कंपैरिजन हो रही है, अवगाहना समान है आपका प्रश्न था ना, हाँ तो दो जीव लिए, एक कौन सा जीव लिया, बिना मारणांतिक परंतु मोड़ वाली गति से, मोड़ वाली विग्रह गति, विग्रह गति नहीं मोड़ वाली गति। देखो आपका प्रश्न है बिना मारणांतिक समुद्घात का अर्थ क्या है, अब कोई जीव मरा तो मरने से पहले कोई जीव मानांतिक समुदाय करने के पश्चात मरते हैं, और कोई जीव बिना मारणांतिक समुद्घात किए हाँ सीधा वो अन्य भव में जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात हो ऐसा कोई नियम नहीं है, हर एक जीव में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। अभी आपका प्रश्न क्या है? हाँ सभी नहीं 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 सभी जीवों का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, किसी किसी जीव का होता है। और वो भी क्यों होता है या कोई सोच समझ कर करते ऐसी कोई बात नहीं, एक इंद्रियों में भी होता है। इंदुबेन आपका क्या प्रश्न है? कोई डिफरेंस नहीं है, सहज ये ऐसे हो जाती है किसी में। मारणांतिक समुदाय का अर्थ क्या होता है? वहाँ तक जाके जीव प्रदेश फिर मूल शरीर में जैसे है वैसे हो जाते हैं।
एक मिनट, अभी मान लीजिए कि आपको मारणांतिक समुदाय होना है, तो अभी आप अश्विन की पर्याय में, तो अश्विन की पर्याय में ही मारणांतिक समुदाय होगा। अश्विन की पर्याय जब खत्म होगी तब विग्रह गति में जाएगा, ख्याल में? यानी ये चालू भव में ही मारणांतिक समुदाय होता है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद समुद्घात होता है, ख्याल में है कि नहीं? सारे समुद्घात चालू भाव में ही होंगे। मारणांतिक समुद्घात का अर्थ
जहां जन्मा है जन्मना है वहां तक फैल के वापस जीव के प्रदेश वापस आते हैं, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। वो भले 14 राज्यों दूर क्यों नहीं हो।
मान लो आपका जन्म अमेरिका में होना है, तो मारणांतिक समुद्घात के लिए अमेरिका में जहाँ जन्मेंगे वहाँ तक जाके वापस आएंगे आप?
बिना वीसा के जा सकते हैं।
हाँ
कर्मों का बंधन ज्यादा वगैरह
तो नहीं, उसमें कर्मों का बंधन की वगैरह कुछ बात नहीं है। कर्मों के विशिष्ट कर्मों का किसी उदय हो इसलिए हो ऐसा कोई नहीं है उसमें, या उसमें कर्मों की में कोई परिवर्तन, कोई जो केवली समुदाय में होता है वैसा यहाँ कुछ नहीं होता है। उस समय जो जीव के परिणाम है बंध तो उनसे चलता है, समुद्घात के कारण नहीं। अब यहाँ दो जीवों में कंपेयर हो रही है, एक तो विग्रह गति करके जाने वाला और दूसरा है वो रुझ गति से जाने वाला। उनके जन्मने के पहले समय में क्या वेरिएशन है इसकी बात चल रही है, क्योंकि हमने देखा था इशु गति से जाने वाला उसका तो अवगाहना उसकी छोटी है। अब कहते जो विग्रह गति से जाने वाला वो भी, परंतु जिसने मारणांतिक समुदाय नहीं किया है ऐसा मोड़ वाले गति से जो गया है उसका भी आकारों में समानता है, वो भी ऐसी छोटी अवगाहना वाला है, ये बताना चाहते हैं। फिर ये वाक्य पढ़ती हूँ मैं, देखो। इनमें से पहले उन्होंने तीन विग्रह वाली गतियाँ बताई, पानी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका, इसको विग्रह गति कहा। इशु गति वाले को इशु गति कहा और मोड़ वालों को विग्रह गति कहा। इशु गति और रुजु गति एक ही बात है। इनमें से जो मारणांतिक समुद्घात के बिना विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के, यानी जिन्होंने पहले मारणांतिक समुद्घात नहीं किया था और अब वो मोड़ सहित यहाँ आए हुए हैं, ऐसे जीवों के ये जीव एक कैटेगरी बताई जीवों की। अभी इनकी कंपेयर अलग जीवों से हो रही है। रुजुगति से उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में होने वाले अवगाहना के समान ही अवगाहना होती है। अब ये जो हमने बोर्ड पर देखा, ये जीव है विग्रह गति से आया हुआ है, दो मोड़ हमने देखा है नहीं, और उसने मारणांतिक समुदाय नहीं किया था। इस जीव के यहाँ जो अवगाहना होगी, उस जीव की अवगाहना, और जो यीशु गति से रुजु गति से आया हुआ जीव है उसकी वो उसी समय की अवगाहना, इन दोनों अवगाहना में समानता है। पहले उन्होंने बताया था कि रुजु गति से आए हुए की अवगाहना छोटी होती है, परंतु यहाँ विग्रह गति वाले की भी उतनी हो सकती है, प्रोवाइडेड उसने मारणांतिक समुदाय नहीं किया था पहले। यहाँ तक बात हो गई बस, यानी अवगाहना समान है, अवगाहना समान है पर शेप समान नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब वो बात आगे बताएंगे क्या कहते हैं। विशेषता केवल इतनी है, दोनों अवगाहनाओं के आकार में समानता का नियम नहीं है। नियम नहीं है क्यों? नियम नहीं है क्योंकि आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले और संस्थान नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले संस्थानों के एकत्व का विरोध है। ये बात समझ में आई? सीधी गति से जो उत्पन्न होता है, यहाँ तक तो उसका मनुष्य गति नाम कर्म का वगैरह उदय था, अब उसी समय में वो पहुँचा है अगले समय में, यहाँ वो अगला उसका समझो देव में गया है, तो देवगति नाम कर्म का तो यहाँ से भी उदय होता है, परंतु यहाँ गत्यानुपूर्वी का उसको उदय नहीं है, बीच में डायरेक्ट वहाँ उसी समय पहुँचा है। पहले समय तो मनुष्य था, अगले समय में देव भी हुआ और वहाँ वो ग्रहण भी चालू हो गया, तो उसका संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो गया। पहले मनुष्य संबंधी संस्थान था आकार, अगले ही समय में उसका संस्थान नाम कर्म का उदय होता है तो उसको देव का आकार चालू हो गया। उसके लिए पूर्ण रूप से उत्पन्न होने के लिए भी एक अंतर्मूर्त लगता है, एक अंतर्मूर्त, उसमें सभी छह पर्याप्ति होगी कि नहीं होगी? अब ये जो जीव है, अब यहाँ उसके कौन से, यहाँ संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं चालू है उसका, यहाँ मूड़ वाला है तो यहाँ आनुपूर्वी का उदय होगा, तो आनुपूर्वी का उदय है तो यहाँ उसका आकार मनुष्य का है, पूर्व भव का आकार रहता है। अब हम दोनों ही मनुष्य मरे और कुत्ता हुए ऐसा समझेंगे, तो ये जो ईशु गति से जाने वाला, उसके संस्थान नाम कर्म का उदय, बीच में उसके आनुपूर्वी का उदय नहीं है, तो उसका डायरेक्ट वो कुत्ते का जो संस्थान है आकार वो चालू हो जाएगा। और जो विग्रह गति से आया हुआ है, उसका विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय है, तिरियन जगत्यानुपूर्वी का, वहाँ कुत्ते की पर्याय मिलने वाली है उसको, तो यहाँ उसकी आयु तो कुत्ते की चालू हो गई, तिरियंच आयु का उदय शुरू हो गया, तिरियंच गति का भी उदय शुरू हुआ, परंतु यहाँ गत्यानुपूर्वी के कारण मनुष्य का आकार कायम है। यहाँ पहुँचते ही संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, पहुँचते ही, पहुँचने के पश्चात, क्योंकि हमने देखा ना, वो तो शरीर के परमाणु का ग्रहण शुरू हो जाता है, तो वहीं पर उसके संस्थान नाम कर्म का उदय होता है, परंतु विग्रह गति में उसका उदय नहीं है। अब इसी बात को यहाँ बताते हैं। यहाँ ये तो समय एक ही है ना, यहाँ ये पहुँचने का ही समय, तो यहाँ पर उसका उदय शुरू हो जाता है। अब दिखाने के लिए यहाँ डिस्टेंस है, समय ही है वो डायरेक्ट, तो यहाँ पर उसका उदय चालू हो जाता है संस्थान नाम कर्म का। अवगाहना यानी उसकी साइज की तरह, और अवगाहना का आकार यानी शेप, अवगाहना उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, और अवगाहना का आकार यानी उसका शेप क्या है, हाँ जो कुछ है उसका, वो तो तीसरे समय में वो हो जाते हैं, उसकी तो अभी बात नहीं आई है, वो आगे चल के आएगी। विग्रह इसमें शेप जो है मनुष्य का आकार वाला, हाँ तो मनुष्य का आकार है विग्रह, इसमें डायरेक्ट वो पहुंचा है उसी समय में, इसको आनुपूर्वी वही समय है उसका, ये एक समय बीच में पास नहीं हुआ है, वही समय है, यहाँ मनुष्य था, अगले समय में वो उसका संस्थान नाम कर्म वो सब शुरू हो गया उसको, पहले ही समय में, दिखाने के लिए हम गया ऐसा कहते हैं, परंतु वो तो उसी समय में हो जाता है सब। देखो ये एकत्व का विरोध है जो कहा, संस्थान दोनों के समान नहीं है, उसका भी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो अभी यहाँ से पढ़ेंगे विशेषार्थ में। यहाँ पर जो आनुपूर्वी और संस्थान नाम कर्म से जनित आकारों में एकत्व का विरोध बताया है, यानी जिसको आनुपूर्वी का उदय है उसी समय संस्थान का उदय नहीं है, संस्थान का उदय हो जाता है उस भव में, अनुपूर्वी का उदय तो मात्र विग्रह वाली गति में ही होता है। जो सीधी गति है रुजु गति, उसमें अनुपूर्वी का उदय ही नहीं होता। अनुपूर्वी कर्म तो निरंतर वो पूरे भव में बनता रहता है, गति बनती है ना, गति के साथ गत्यानुपूर्वी भी बनता रहता है, परंतु उदय मात्र वो पहले किसी का होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। जहाँ एक दो या तीन मोड़े वाले हैं, वहाँ एक दो या तीन समय तक ही उसका उदय रहता है, बाकी उसका कुछ कार्य नहीं है। तो जिसको अनुपूर्वी का उदय है उस समय उसको संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं है, ये बातें बताना चाहते हैं। विरोध है उसका अभिप्राय यह है कि विग्रह गति में, विग्रह ने वो मोड़ वाली, जीव के आकार में अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से निमित्त है। इससे कहां लगाया, नाम कर्म के उदय निमित्त है क्योंकि वहां पर संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं होता, किंतु रुजु गति में अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय नहीं है। हमने देखा था ना, उसी समय में पहुंचता है तो वहां उसका संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, क्योंकि अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय कारमान का योग वाली विग्रह गति में ही होता है। ये मोड़ से पहले पहले ही होता है, अंतिम मोड़ के बाद कारमान का योग नहीं है। जैसे हमने कहा ना, वो आहारक अनाहारक भी कब होता है, जब कारमान का योग में है। उसी प्रकार यहाँ अनुपूर्वी का उदय कब है, जब कारमान का योग में है। यहाँ पर विग्रह गति की बात चल रही है, केवली को ये बात नहीं एप्लीकेशन में, समुद्रात में नहीं लगाना उसको, कारमान का योग है वहां पर। कारमान का योग में है ना, बहुत सारे कर्मों का उदय है, आठों ही कर्मों का उदय होगा। आयु का उदय है कि नहीं है, आयु का है। ज्ञानावरण का है कि नहीं, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय, नहीं तो मोहनीय का उदय मिट गया तो वितराग होगा विग्रह गति में। सभी कर्मों का उदय है, जिस गुणस्थान में जितने कर्मों का उदय है। अब विग्रह गति में पहला दूसरा या चौथा गुणस्थान है तो उस योग्य उसके कर्मों का भी उदय होगा। अब नाम कर्मों के उदय में जो वेरिएशन होता है, काल के अनुसार वेरिएशन है, फिर भी वहां भी हमने देखा था नाम कर्म वाली जो है, वहां 20 प्रकृतियों का 21 प्रकृतियों का उदय है विग्रह गति में, परंतु उसमें संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं होता, वहां पहुंचने पर होता है। शरीर नाम कर्म का भी उदय वहां पहुंचने पर होता है, औदारिक शरीर है या वैकरिक शरीर, वो भी प्रत्येक या साधारण नाम कर्म का उदय भी वहां पहुंचने पर होता है। बाकी त्रस पर्याप्त और सूक्ष्म या बादर, उसका तो उदय पहले से ही शुरू हो जाता है, पहले समय से। आप पढ़ना ये कर्मकांड में, नाम कर्म के उदय के अलग अलग 5 काल देखे थे और उसमें कौन से काल में किस कर्म का उदय है, तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और आपके सभी प्रश्न सुलझ जाएंगे। देखो, रुजु गति में तो कारमान काय योग न होकर रुजु गति में कौन सा योग हो जाता है, मिश्र काय योग होता है। उसी समय में वहां वो नौकर्म का ग्रहण भी शुरू हो जाता है, तो मिश्र का योग होता है। औदारिक मिश्र या वैकरिक मिश्र का योग ही होता है, और गोमरसार कर्मकांड आदि में इन दोनों मिश्र योगों में संस्थान नाम कर्म का उदय बताया गया है, अनुपूर्वी का नहीं। इससे सिद्ध है कि रुजु गति से उत्पन्न होने वाले जीव के प्रथम समय में ही विवक्षित क्षेत्र में उत्पत्ति हो जाने से संस्थान नाम कर्म का उदय हो जाता है। इसलिए अनुपूर्वी और संस्थान नाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले आकार भिन्न ही होंगे, एक से नहीं। विग्रह गति में अनुपूर्वी के उदय से जीव के पूर्व शरीर का आकार रहता है, ये बात है ना स्पष्ट शब्दों में, पूर्व शरीर का, जो मनुष्य मरकर कुत्ता है तो पूर्व शरीर का उसका आकार इसमें कायम है, किंतु संस्थान नाम कर्म के उदय से वर्तमान पर्याय का आकार हो जाता है। बहुत क्लियर लिखा है उन्होंने। अब कहते हैं मारणांतिक समुद्घात करके, पहले बताया था मारणांतिक समुद्घात के बिना, अब मारणांतिक समुद्घात करके विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के पहले समय में असंख्यात योजन प्रमाण अवगाहना होती है। तो इसका अर्थ है वो मारणांतिक समुद्रात वो रहता है और फिर प्रदेश वहीं पर रहते हैं ऐसा। ये पूर्ण मूल में ऐसा इसने फैलाए हैं यहाँ तक जाके ये रहे, वो चला नहीं जाएगा, ये ऐसा फैला के रहेगा। यहाँ भी उसके प्रदेश है मूल शरीर में और यहाँ पर पहुंच गया है वो, और फिर यहाँ से वो समेटेगा वहाँ। उसको ऐसा उदाहरण देते हैं जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचा वो और फिर यहाँ से उसने पैर उठा लिए मान लो, और फिर ये प्रदेश समेट कर यहाँ आ गए। मारणांतिक समुदाय अभी अंतिम समय में, वो तो आयु बंधने के वहां की बात है ही नहीं है। हाँ, अंतर्मूर्त पहले, परंतु वो ऐसे फैला के रहते हैं। नहीं समझा? हाँ बिल्कुल, यहाँ का जो अंतिम समय होगा तब तक तो वो मनुष्य गति संबंधी जो कुछ है उसका उदय चलेगा। अब जो अभी वहाँ यहाँ से यहाँ फैला है, उस यहाँ से यहाँ तक फैल गया है और फिर उसने यहाँ से उठा लिया अपने पैर मान लेते हैं, ये मरण हो गया उसका। अभी ये फैले हुए फिर ये यहाँ पर आ गए प्रदेश, इसलिए वो असंख्यात योजन के बताए हैं। उसके प्रदेश फैले हुए रहे हाँ, और यहाँ मरण हुआ, यहाँ से छूट गए प्रदेश और फिर वो वहाँ चला गया। ऐसा हमने तो ऐसे ही पढ़ा था, एक अंतर्मूर्त पहले होता है और वो फिर वापस मूल शरीर में लौटता है, ऐसा पढ़ा था हमने। हाँ, समुद्घात की परिभाषा जो हमने देखी तो ऐसी देखी थी, मूल शरीर को छोड़े बिना जीव प्रदेशों का कारमान और तेजस शरीर के साथ फैलना और फिर वापस मूल शरीर में लौटना, ऐसा भी है ना उसमें, कुछ समय के लिए होता है ना ये। अब इसकी बात आएगी आगे शायद। यहाँ तो ऐसे उसके जो फैले हुए आत्म प्रदेश है वहीं रहते हैं और फिर जो मान लेते मनुष्य को छोड़ा, मनुष्य शरीर को, तो वहाँ से उसके आत्म प्रदेश अभी छुड़ गए और अभी ये पूरे फैले हैं यहाँ से, मान लो कोई स्वर्ग में उत्पन्न होने, तो यहाँ से वो स्वर्ग तक उसके फैले हुए हैं, तो इसलिए वो असंख्यात योजन के बताए उन्होंने। अंतर्मूर्त तक फैले हैं, परंतु जो छोड़ा तो उसका एक समय में वो मरण हो गया, अभी उसके जो तीन समय वो बताए विग्रह गति के जो तीन समय बताए हैं वो उसकी अपेक्षा से। देखो, मारणांतिक समुद्घात करके विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के पहले समय में असंख्यात योजन प्रमाण अवगाहना होती है, क्योंकि पहले फैलाए गए एक दो और तीन दंडों का प्रथम समय में संकोच नहीं होता है। संकोच करने के लिए वो एक दो तीन समय उसके लगेंगे। इस प्रकार अभी हमने जो सब भेद देखे समुद्घात के भेद, एक उपपाद वाला और दो स्वस्थान, इस प्रकार स्वस्थान के दो भेद, समुद्घात के सात भेद और एक उपपाद, इन दस विशेषणों से यथासंभव विशेषता को प्राप्त मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों के क्षेत्र का निरूपण करते हैं। जब हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि जीव तो उसमें ये 10 अपेक्षाएं लगाएंगे, तो 10 अपेक्षा लगाएंगे, लगेगी कि नहीं लगेगी? कौन कौन सी अपेक्षा नहीं लगेगी? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कौन से नहीं लगेंगे, इसमें से इस 10 में से कौन सा नहीं लगेगा? हाँ, केवली समुदात नहीं, आहारक नहीं और तेजस भी नहीं, वो भी मुनियों के होता है, वो द्रव्यलिंगी मुनियों के होता है, ऐसा नहीं है। तो बाकी वेदना हो सकता है, कषाय हो सकता है, मारणांतिक हो सकता है ना, बाकी तो सब हो गए। अब देखेंगे इसमें से स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो सर्वलोक में रहते हैं। या तो स्वस्थान स्वस्थान अकेला ही लिया है, पूरे लोक में विहारवत क्यों नहीं लिया, होना चाहिए। आप क्या कहते बोलो, पढ़ो मत, बुद्धि से विचार करो। हाँ, प्रश्न तो मैंने पूछा है ना। हाँ, पूरे लोक में विहारवत स्वस्थान क्यों नहीं लेना। हाँ हाँ, विहार नहीं करेगा तो कौन सा विहार करेगा, जल का एक के वायु का एक। हाँ, विहायोगति नाम कर्म का उदय किसके है, द्विंद्रियों से है, त्रस जीवों के है। तो उसका विहारवत वाले को पूरा लोक तो नहीं कह सकते, त्रस जीव तो वो बाहर वाले विहार नहीं करेंगे, ख्याल है ना। देखो किस कारण से, चूंकि सर्व जीव राशि के संख्यात्वे भाग से न्यून शेष सर्व जीव समूह स्वस्थान स्वस्थान राशि रूप रहता है, तथा वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए जीव भी सर्व जीव राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। सभी जीव तो नहीं करते, किसी किसी को होता है, तो संख्यात्वा भाग है। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए जीव भी सर्व जीव राशि के संख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि उक्त तीन राशियों के समुद्घात का काल अपने जीवन काल के संख्यात विभाग प्रमाण है। वो संख्यात विभाग प्रमाण कैसे संख्या निकाली, तो काल की अपेक्षा संख्या निकाली। मारणांतिक वगैरह ये जो काल है उसका अंतर्मूर्त होगा तो, और बाकी लाइफ टाइम तो बड़ा है, तो उसकी अपेक्षा से उसका संख्यात विभाग का। उपपाद राशि तो सर्व जीव राशि के असंख्यात वे भाग है, क्योंकि उपपाद राशि का संचय एक समय में होता है। उपपाद राशि हम एक समय वाली है तो वो तो असंख्यात वा भाग है, क्योंकि कोई भी जीव अपर्याप्त भी क्यों ना हो, वो असंख्यात समय तक जिएगा, तो उसका उपपाद का समय एक है, यानी पूरे लाइफ स्पैन से असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इसलिए वहाँ की जीव राशि भी असंख्यात वे भाग प्रमाण, या उसका क्षेत्र भी असंख्यात विभाग प्रमाण कहेंगे। अतः स्वस्थान स्वस्थान आदि उक्त पांचों जीव राशियां अनंत है, इसलिए वे सर्वलोक में पाई जाती हैं। उसका विशेषार्थ कहते हैं आगे, मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों से तथा मार्गणा स्थानों से जीवों का क्षेत्र सामान्य लोक, सामान्य लोक यानी पूरा ही लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक, इन पांच प्रकार के लोकों की अपेक्षा बतलाया गया है। ये कहेंगे अधोलोक में रहते हैं या ऊर्ध्वलोक में रहते हैं या तिर्यक लोक में रहते हैं या मनुष्य लोक में रहते हैं या पूरे लोक में रहते हैं, जिसको सामान्य लोक कहा। सामान्य लोक यानी सभी भेद जिसमें गर्भित है उसको सामान्य कहते हैं। 343 घनराजु प्रमाण सर्वलोक को सामान्य लोक कहते हैं। 196 घनराजु प्रमाण या 4 राजु मोटे जगत प्रतर प्रमाण लोक के अधो भाग को अधोलोक कहते हैं। ऐसा क्यों कहा, अधोलोक को 4 राजु मोटा जगत प्रतर क्यों कहा। जगत प्रतर का अर्थ होता है 7 राजु गुना 7 राजु 49। तो ये अधोलोक का ऐसा है, सर्वत्र उसके 7 राजू उसकी डेप्थ है, नीचे उसका 7 राजू है, पूर्व पश्चिम 7 राजू है और ऊपर 1 राजू है, परंतु हाइट 7 राजू ही है। हाइट 7 राजू, दक्षिणोत्तर 7 राजू, परंतु यहाँ नीचे 7 और ऊपर 1, तो एवरेज हुआ 4। तो सात राजू बाय सात राजू इस ये जगत प्रतर कहेंगे हम इसको, और उसकी हाइट हम चार राजू लेंगे, तो इसको कहते हैं चार राजू प्रमाण जगत प्रतर। चार राजू प्रमाण जगत प्रतर का अर्थ होता है चार गुणा सात घन राजू, बराबर। ये उन्होंने निकाल के देखा था, कल हमने देखा था इसको, इसको अधोलोक कहते हैं। 147 घन राजू या तीन राजू मोटे जगत प्रतर प्रमाण लोक के ऊर्ध्व भाग को ऊर्ध्व लोक कहते हैं, यानी ऊर्ध्व लोक का जो घनफल है 147 घन राजू है वो, हाँ तीन, वो एक पांच और एक के लिए कल हमने सूत्र देखा था, एक को पांच गुणा करो पांच हुए, उसमें एक मिलाओ छह हुए, उसका आधा करो तीन हुए, कल इसके लिए हमने सूत्र भी देखा था। हाँ देखो प्लस एक करो, यहाँ लिखा है देखो, क्या कहते हैं आप, एवरेज करने से नहीं होगा साढ़े तीन, मगर क्या है यहाँ पांच राजू उसकी विड्थ पांच राजू है और नीचे सात और एक थी, हाइट तो सात है अंदर डेप्थ भी सात है, परंतु ये तो पांच एक और एक है, देखो 21 पृष्ठ पर है इसके विशेषार्थ में बताया उन्होंने देखो, और उसके लिए ऊपर 10 नंबर की जो गाथा है वो उसका मूल सूत्र बताया उसमें, मूलम मध्ये न गुणम, मुख से वो मध्य जो है पांच राजू उसको गुणा करो, मुह सहित दम उससे कधी गुणिदम, यानी फिर मुह सहित करना उसको, यानी पांच गुणा करो फिर एक उसमें मिला दो फिर उसका आधा करो, उच्छेद अधि गुणिदम और उच्छेद से गुणा करो, सात से गुणा करो और फिर वो चौड़ाई उससे भी गुणा करो तो घनफल आता है। तो ये 147 घन राजू या तीन राजू मोटे जगत प्रतर प्रमाण लोक के ऊर्ध्वभाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं, ये हमने 20-21 पेज पर इसका देखा था। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के मध्य में स्थित पूर्व, अपने 31 पेज निकालना 31 जहाँ विषय चल रहा है अपना, अधोलोक की उन्होंने अधोलोक का घनफल बताया कितना था, 196 घन राजू, ऊर्ध्वलोक का 147 घन राजू, और ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में मध्यलोक है, पूर्व पश्चिम दिशा में एक राजू चौड़ा, उत्तर दक्षिण दिशा में सात राजू लंबा और 100,000 योजन ऊंचे क्षेत्र को तिर्यक लोक या मध्यलोक कहते हैं, उसको तिर्यलोक कहते हैं। ढाई द्वीप प्रमाण विस्तृत अर्थात 45,00,000 योजन चौड़े और 100,000 योजन ऊंचे क्षेत्र को मनुष्यलोक कहते हैं, किसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं वो बता रहे। एक लोक सामान्य के पांच भेद करने का अभिप्राय यह है कि जब हम सामान्य लोक कहेंगे तो पूरा ही लोक आ गया 343 घन राजू, उसके ये पांच भेद बताएं कि विवक्षित जीव के बताए गए क्षेत्र का ठीक परिमाण समझ में आ जावे। नारकियों का क्षेत्र कहेंगे तो उसकी वो अधोलोक में बताएंगे सब ऐसा। जहाँ जिन जीवों का क्षेत्र सर्वलोक बताया जावे वहाँ सामान्य लोक का ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना यानी जानना चाहिए। जहाँ दो लोकों का निर्देश किया जावे वहाँ अधोलोक और ऊर्ध्वलोक इन दो लोकों का ग्रहण करना। जहाँ तीन लोकों का निर्देश किया जाए वहाँ अधोलोक ऊर्ध्वलोक और तिर्यक लोक का ग्रहण करना तथा जहाँ चार लोकों का निर्देश किया जाए वहाँ मनुष्यलोक को छोड़कर शेष चारों लोकों का ग्रहण करना चाहिए। अब विहारवत स्वस्थान मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। चूंकि त्रस का एक अपर्याप्त राशि तो विहार करती नहीं है, पहले में पहले विहार कौन करते हैं? तो स्थावर नहीं करते, त्रस करते हैं। तो क्या त्रस राशि पूरी विहार करती है? तो अपर्याप्त राशि नहीं करती। तो अपर्याप्तों का प्रमाण तो असंख्यात गुणा कहा था हमने, और वो भी देखो क्योंकि त्रस का एक अपर्याप्तों में विहायोगति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। ये नाम कर्म के उदय के स्थान जो अभी हमने दिखे, पहले वहां आया तो संस्थान नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का तो उदय चालू हो गया, प्रत्येक या साधारण नाम कर्म का तो उदय चालू हो गया, परंतु विहायोगति नाम कर्म का उदय अभी नहीं हुआ, वो तो पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति के बाद चालू हो जाएगा। क्योंकि उदय नहीं होता। तीसरी लाइन में त्रस का एक पर्याप्तकों के भी संख्यात वे भाग प्रमाण राशि ही विहार करने वाली होती है, उसमें योग्यता है परंतु उसका भी संख्यात वा भाग ही विहार करेंगे। क्योंकि यह मेरा है इस प्रकार की बुद्धि से स्वीकार किया गया क्षेत्र स्वस्थान है, और उससे बाहर जाकर रहने का नाम विहारवत स्वस्थान है। तो संख्यात वे भाग प्रमाण ही बाहर जाके रहेंगे। उस विहारवत स्वस्थान क्षेत्र में रहने का काल अपने आवास में यानी स्वस्थान में रहने के काल के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। जैसे हम पूरी लाइफ यहाँ तक 50 साल रहेंगे और बाहर जाके रहेंगे तो मान लेते साल में महीना भर कहीं शिविरों में गए, कहीं कहाँ गए, थोड़ा ही होगा ना, तो संख्यात्वा भाग होगा। इसलिए विहारवत स्वस्थान मिथ्यादृष्टि जीव दोनों लोकों के अर्थात अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इसका कारण यह है अधोलोक का प्रमाण चार राजू मोटा जगत प्रतर है, यानी अभी जो हमने 147 घन राजू देखा था, और ऊर्ध्वलोक का प्रमाण अधोलोक, हाँ अधोलोक 196 और ऊर्ध्वलोक में उल्टा बताया 147। कहाँ गया वो, हाँ, और ऊर्ध्वलोक का प्रमाण तीन राजू मोटा जगत प्रतर है। तीन राजू मोटा जगत प्रतर है, जगत प्रतर है 49 स्क्वायर राजू गुणा तीन, हाँ 147 घन राजू। संख्यात घनांगुल गुणित त्रसकायिक पर्याप्त राशि के संख्यात्वे भाग से इन दोनों ही लोकों के भाजित करने पर जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग लब्ध आता है। ये जो पूरा क्षेत्र है उसको उस राशि से भाग देना तो उन जीवों का क्षेत्र निकलेगा, उसका ही विशेषार्थ बताते हैं, उसको फिर देखेंगे। देखो उसी की अपेक्षा तो बता रहे हैं ना, अधोलोक का वो कितवा भाग है ये बताना चाहते हैं, बताना तो वही चाहते हैं। त्रस नाली क्या पूरा अधोलोक है क्या? नहीं है, तो उसका क्षेत्र छोटा है उसकी अपेक्षा से। कल हमने निकाला था त्रस नाली का, तो इसी उसी अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं कि पूरे अधोलोक के कितवा भाग है। तो वो जहाँ रहते हैं वो तो हमें भी सोचना है, वो कहाँ रहते हैं, त्रस नाली में है तो वो कितवा क्षेत्र है, उसका संख्यात्वा भाग है कि जो कुछ है वो लेना उसमें। देखो त्रस का एक पर्याप्त जीवों का प्रमाण क्षेत्र की अपेक्षा सुचंगुल के संख्यात्वे भाग के वर्गरूप भागार से भाजित जगत प्रतर प्रमाण बताया गया है। यह हम तीसरी पुस्तक में पढ़ाए हैं। त्रसों का पर्याप्त जीवों का प्रमाण क्षेत्र की अपेक्षा कितना है? जगत प्रतर डिवाइडेड बाय सुचंगुल के संख्यात्वे भाग का वर्ग। इस प्रमाण वाली त्रस पर्याप्त राशि के भी संख्यात्वे भाग प्रमाण ही विहार करने वाली राशि होती है। अब यदि एक त्रस पर्याप्त जीव की मध्यम अवगाहना, अभी इतने जीवों की अवगाहना से उसको गुणा करना है तो उसके लिए एवरेज अवगाहना निकालेंगे। तो बड़े बड़े अवगाहना वाले त्रस कहाँ रहते हैं? स्वयंभू रमण, वो द्वीप और समुद्र, द्वीप यानी आउटर हाफ और समुद्र, वहाँ बड़ी बड़ी अवगाहना वाले। और छोटी अवगाहना वाले कहाँ रहते हैं? अब सेंटर में यानी जम्बूद्वीप या जो कुछ है, या उसमें भी ऐसा है छोटी अवगाहना वाला त्रस लेना। अभी त्रस इन जनरल, वो द्विंद्रिय के पंचेंद्रिय उसकी बात नहीं है, वहाँ बड़ी अवगाहना वाला और यहाँ सबसे छोटी अवगाहना, तो उसका एवरेज निकालेंगे। तो कहते हैं यदि एक त्रस पर्याप्त जीव की मध्यम अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण मानकर, अब बाहर के जो बड़े बड़े मगरमच्छ है या कोई जो है उनकी अवगाहना तो कितनी है, 12.5 करोड़ घन योजन, और अंदर की मान लेते मिनिमम जो कुछ है, तो एवरेज निकालने के लिए उसका आधा करेंगे तो भी हो जाएगा, फिर भी वो योजनों में है, तो योजनों के अंगुल करेंगे वो भी संख्यात ही होंगे, भले करोड़ों होंगे फिर भी उसको हम संख्यात अंगुल कहेंगे, तो ये संख्यात घनांगुल उसकी अवगाहना होगी। उससे विहार करने वाले राशि के प्रमाण को गुणित भी किया जाए तो भी, यानी एक जीव की अवगाहना इतनी है तो विहार करने वाले जीवों की अवगाहना कितनी होगी, ऐसा त्रैराशिक करेंगे हम, और उसका जो प्रमाण आएगा उसको हम विहारवत क्षेत्र कहेंगे। तो भी कहते हैं उसका जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहना सिद्ध होता है, वो उसकी जो संख्या आएगी वो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग आती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विहार करने वाली त्रस राशि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के असंख्यातवे भाग में रहती है, क्योंकि इन दोनों लोकों का प्रमाण जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत अधिक है। दोनों लोकों का प्रमाण कितना है, जगत श्रेणी का वर्ग है 49 स्क्वायर राजू प्रतर राजू, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, और ऊपर के लिए हमने उसको 3 गुना किया था और नीचे के लिए 4 गुना किया, तो इसका अर्थ होता है जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत बड़ी है ना। दोनों लोक का प्रमाण क्षेत्र जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत बड़ा है, परंतु जो त्रस पर्याप्त जो विहार करने वाले हैं वो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है। इतना यानी दोनों लोक के असंख्यात भाग है इतना बताना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों लोकों का प्रमाण जगत श्रेणी के वर्ग से भी बहुत अधिक है। अब शंकाकार पूछता है 33 पृष्ठ पर आए हम, त्रस का एक पर्याप्त राशि के संख्यात भाग प्रमाण विहार व स्वस्थान राशि का गुणकार संख्यात घनांगुल है, यह कैसे जाना जाता है। उसका समाधान प्रकृत में, यानी अभी जो अपना विषय चल रहा है हाल में, स्वयं प्रभ नगेंद्र पर्वत के परभाग में स्थित, ये स्वयं प्रभ नगेंद्र, नगेंद्र यानी क्या, नगेंद्र किसको कहते हैं, पर्वत को, नगेने पर्वत, नगों में भी श्रेष्ठ है वो, बड़ा है ना पर्वत, तो नगेंद्र ने पर्वत कौन सा, स्वयं प्रभ नगेंद्र, स्वयं प्रभ पर्वत, ये कहाँ पर है, अंतिम स्वयंभू रमण जो द्वीप है, द्वीप की बात चल रही, समुद्र के पहले जो द्वीप है उसके बीचों बीच ऐसा कंकणाकृति पूरे ही द्वीप में फैला हुआ आधे पर, जैसे पुष्कर द्वीप में सेंटर में मानुषोत्तर पर्वत है पूरा ही ऐसा, वैसे वहाँ स्वयंभू रमण द्वीप में पूरा ही ऐसा स्वयं प्रभ पर्वत है। उस स्वयं प्रभ नगेंद्र पर्वत के परभाग में यानी आउटर हाफ में, समुद्र की तरफ का भाग स्थित त्रस का एक पर्याप्त जीवराशि प्रधान है, उसकी मुख्यता से यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था वहाँ बड़ी बड़ी अवगाहन वाले द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि जीव पाए जाते हैं, क्योंकि यह राशि इतर कर्मभूमि जीवों की अपेक्षा दीर्घायु और बड़ी अवगाहना वाली है, आयु भी बड़ी है और अवगाहना भी बहुत बड़ी है। हमने देखा ना रक्त बिच्छू या शंख बड़े बड़े अवगाहना वाले हैं, वहाँ योजनों के अवगाहना वाले हैं। भोग भूमि में तो विकलेंद्रिय जीव नहीं होते, भोग भूमि में तो विकलेंद्रिय जीव नहीं होते, और वहां पर पंचेंद्रिय जीव भी स्वल्प होते हैं। पंचेंद्रिय जीव तो है विहार वाले हैं, परंतु वे भी अल्प है, और वहां विकलेंद्रिय तो है नहीं है, क्योंकि शुभ कर्म के उदय की अधिकता वाले बहुत जीवों का होना असंभव है। हाँ, एक जीव का अवगाहना इतनी, तो इतने जीवों की कितनी, उसकी अपेक्षा उन्होंने क्षेत्र निकाला। बिहारवत को हमने देखी ना कल, जहाँ वो जाता है, बाहर रहता है, सोता है, व्यापार करता है, एक जीव की अपेक्षा। अब ये सभी जीवों की अपेक्षा चल रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव बिहारवत वाले कितने हैं, तो जितनी संख्या होगी उसको उनकी अवगाहना से गुणा करेंगे और फिर उनका जो विहार करने का क्षेत्र भी उसमें ले लेंगे। हाँ, वो ज्यादा है, पर उनसे वो तिरियंश जो है अनंत वाले, उसे भूल गए आप उसको। अभी यहाँ विकलेंद्रिय और पंचेंद्रियों की बात चल रही है, भोगभूमि के पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय, इनमें कंपैरिजन चल रही है। अब स्वयं प्रभु पर्वत के परभाग में स्थित जीवों की अवगाहना सबसे बड़ी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह गाथा सूत्र है। अब ऊपर का सूत्र पढ़ेंगे हम। शंखो पुण बारह योजनानि गौम्य भवति कोसम तु भमरो योजनमेघम मच्छो पुनजोजन सहसो। कुछ ख्याल में आता है? शंखो पुण बारह योजनानि, शंख जो है कितने इंद्रिय वाला जीव है, द्विंद्रिय, वो बारह योजन। अब ये तो खाली एक लंबाई बताया उन्होंने। गोमी यानी वो गोम कहते ना, मल्टीपेड़ बाहर, वो गोम का गोम यानी क्या कहते, कान खजूरा। हाँ वही है ना, कान खजूरा छोटा क्या, इतना बड़ा लंबा देखता है हमने, वो नहीं, ये बड़े बड़े मल्टीपेड़े कहते हैं ना, मल्टीपेड़े, सेंटीपेड और मल्टीपेड ऐसा आता है ना। हाँ, ये गोमी, गोम कहते हैं मराठी में, तो उसको गोम कहते हैं। भवती ती कोसम तू, तीन कोस, भमरो जयन मेघम, ईयर तो दो इंद्रिय प्राणी है, भमरो योजन मेघम, भ्रमर जो है वो एक योजन वाला है, मच्छो पुण योजन सहस्रो, और मत्स्य जो महामत्स्य है वो सहस्र है, हजारों योजन वाला है। नीचे उसके अर्थ करते देखो। शंख नामक द्विंद्रिय जीव बारह योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। खाली लंबाई बताइए, बाकी चौड़ाई वगैरह वो निकालेंगे हमें, उसका घनफल निकालेंगे। गोमी नामक तीन्द्रिय जीव कितने इंद्रिय वाला है, तीन्द्रिय, और वो जो आप ईयर कहते हैं वो तो दो इंद्रिय वाला होता है। ये तीन्द्रिय में वो सब चींटी पिपीली का वो सब जो आते हैं वो इसमें आते हैं। गोमी नामक तीन्द्रिय जीव तीन कोस की लंबी अवगाहना वाला है। ये खाली आपको वो तो टीवी में या सीरियल में या कॉमिक्स में दिखाते ना, बड़े बड़े ऐसे, वो वहां से कोई आया होगा मरकर तो ऐसी कथाएं सूझ जाती है क्यों। तीन ये जीव तीन कोस की लंबी अवगाहना वाला होता है, और भ्रमर नामक चतुरिंद्रिय जीव एक योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। अभी वो योजन कितना बड़ा होगा। और महामत्स्य नामक पंचेंद्रिय जीव 1000 योजन की लंबी अवगाहना वाला होता है। ये तो केवल उन्होंने लंबाई बताई, उसमें चौड़ाई वो जो कुछ थिकनेस जो है यथा योग्य समझ लेना। योजनों और कोसों में कही गई इन अवगाहनाओं को घनांगुल प्रमाण से करने पर संख्यात घनांगुल होते हैं। योजन भी है तो उसके संख्यात घन, वो करोड़ों भले हो जावे परंतु वो संख्यात में ही उसकी गणना होगी। इसलिए विहारवत स्वस्थान राशि का गुणकार संख्यात घनांगुल स्थापित किया है। संख्यात घनांगुल बता देते हैं तो यथा योग्य समझ लेना इसे कहते हैं। संख्या देने दो चार पांच ऐसा नहीं समझना। अब शंकाकार पूछता है, स्वयं प्रभु नगेंद्र पर्वत के उस ओर जघन्य अवगाहना वाले भी जीव पाए जाते हैं क्या? बड़ी अवगाहना वाले है परंतु छोटी भी वहां होगे कि नहीं होगे? उसका समाधान नहीं, क्योंकि जघन्य अवगाहना रूप मूल अर्थात आदि और उत्कृष्ट अवगाहना रूप अंत, हमने एवरेज निकाला था ना, छोटी अवगाहना और बड़ी अवगाहना, इन दोनों को जोड़कर आधा करने पर भी संख्यात घनांगुल देखे जाते हैं। उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहनाओं को जोड़कर आधा करने पर संख्यात घनांगुल कैसे आते हैं? आगे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए उन द्विंद्रियादिकों की अवगाहनाओं में से पहले भ्रमर क्षेत्र के घनफल के निकालने का विधान कहते हैं। भ्रमर जो है उसका घनफल निकालेंगे। भ्रमर चतुरिंद्रिय जीव है और भ्रमर क्या भूंगा जिसको कहते हैं बाहर, उसका पिक्चर उसके चित्र है ना यहाँ पर, वो आकृति जो हमने वो चित्र पहले देखे थे, आकृति नंबर 16 वाला भ्रमर जो दिखाया है, वो लोकाकाश के जो देखे थे फिगर उसके नीचे। अब पहले उसकी अवगाहना बताएंगे, उसके हाइट कितनी है लंबाई कितनी वो पहले बताएंगे। एक योजन लंबे, आधे योजन ऊंचे और आधे योजन की परिधि प्रमाण विष्कम्भ वाले, विष्कम्भ है ना उसका जो ये परिधि निकालना, आधा योजन की परिधि, तो आधे योजन की परिधि प्रमाण विष्कम्भ वाले भ्रमर क्षेत्र को स्थापित करके विष्कम्भ के आधे को उच्छेद से गुणा करके जो लब्ध आवे उसे आयाम से गुणित करने पर एक योजन के आठ भागों में से तीन भाग लब्ध आते हैं और यही भ्रमर क्षेत्र का घनफल है। एक योजन के आठ भागों में से तीन भाग, तीन अष्टमांश योजन घन योजन, ये उसका घनफल आता है, तीन अष्टमांश घन योजन। अभी इसके वो अंगुल करके बताएंगे। देखो उदाहरण दिया, भ्रमर का आयाम एक योजन, आयाम यानी लंबाई, उच्छेद आधा योजन यानी उसकी हाइट, विष्कम्भ यानी चौड़ाई कितनी है, तो आध योजन की परिधि प्रमाण, आध योजन की परिधि उसके राउंड अबाउट तीन गुना होती है, तो आध योजन की स्थूल परिधि डेढ़ योजन है ना, वन एंड हाफ योजन, आधे के तीन गुना करेंगे तो तीन द्वितीयांश हो जाएगा, उसका आधा करना है। हाँ, विष्कम्भ ने चौड़ाई, हाइट लेंथ चौड़ाई रुंदी, तो ये जो उसका हाफ किया क्योंकि वो सर्वत्र समान नहीं है ना भ्रमर जो है, इसलिए उसका एवरेज निकाल उसका आधा किया, तो तीन द्वितीयांश का आधा है तीन चतुर्थांश। अब जो तीन हमें चीजें मिली है, एक तो तीन चतुर्थांश गुणा एक द्वितीयांश और एक योजन लंबा, तीनों का आपस में गुणा करना है, तो तीन चतुर्थांश को आधा से गुणा तीन अष्टमांश हुए और तीन अष्टमांश से को एक से गुणा किया तो तीन अष्टमांश घन योजन आया। ये भ्रमर का जो घनफल है वो तीन अष्टमांश घन योजन, ये भ्रमर की बात हुई चतुरिंद्रिय वाला। भ्रमर क्षेत्र के योजन में आए हुए घनफल के, अब ये योजन में उत्तर आया है उसको हमको घनांगुल करना है, उसके घनांगुल करने पर इस उच्छेद घन योजन में आए हुए घनफल को, ये उत्तर आया है उच्छेद घनफल घन योजन में, जैसे हमने देखा ना उच्छेद अंगुल, देखो देखो ये उच्छेद योजन में उत्तर आया है, ये प्रमाण योजन नहीं है। अब इसको हम प्रमाण योजन करेंगे और प्रमाण अंगुल करेंगे, या पहले इसके प्रमाण अंगुल उच्छेद अंगुल करेंगे और फिर उसके प्रमाण में उसको ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उच्छेद घन योजन में ये उत्तर आया है और उसको हमको प्रमाण अंगुल में करना है। घनफल को 1536 के घन 362 करोड़ 38 लाख 78 हजार 656 से गुणित करने पर प्रमाण घनांगुल होते हैं। नहीं समझे? ये हमने पहले देखा था, 6 अंगुल का एक पाद होता है, 2 पाद की एक विलस्ती होती है ना, हाँ विलस्ती होती है ना, 2 विलस्ती का एक हाथ होता है, 2 हाथ की एक वीक होती है, और फिर वीक 2 वीक का एक धनुष होता है, फिर धनुष के आगे कितने धनुष का एक कोष होता है, 2000 धनुष का एक कोष होता है, और 4 कोष का एक योजन होता है। तो एक योजन में कितने अंगुल हो गए, हमने अंगुल से किया था 6 अंगुल, फिर उसका 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 2000 और फिर 4 कोस, बेदनी चारदनी आठदनी 96 × 8000 करो, 96 × 8000 तो उसका उत्तर आएगा 768000। तो एक योजन में 768000 अंगुल होते हैं, ये उच्छेद अंगुल और उच्छेद योजन की बात है। प्रमाण अंगुल में भी वैसा प्रोपोर्शन तो वही होगा, अभी हम उच्छेद अंगुल की बात कर रहे हैं। तो एक योजन में 768000 अंगुल होते हैं, तो आपको अंगुल का, उच्छेद अंगुल का और प्रमाण अंगुल का प्रोपोर्शन मालूम है, कितने उच्छेद अंगुलों का एक प्रमाण अंगुल होता है, तो हम करेंगे 500 उच्छेद अंगुल का एक प्रमाण अंगुल, तो 768000 का कितना, तो इसको हम 500 से डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो गए, 5 × 5 × 5 5×5 = 25 5×3 = 15 5×37 = 1536 एक उच्छेद योजन इज इक्वल टू 1536 प्रमाण अंगुल। सिंपल योजन की बात चल रही है, घन योजन की नहीं। देखो अभी ऐसा लिखना, एक उच्छेद योजन इज इक्वल टू 768000 उच्छेद अंगुल, बराबर, इसको 500 से डिवाइड करते हैं तो हमको प्रमाण अंगुल मिले। देखो एक योजन यानी उच्छेद योजन इज इक्वल टू 768000 उच्छेद अंगुल इज इक्वल टू, यानी इसी को अभी 500 से डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 1536 प्रमाण अंगुल। यानी अभी अपना इक्वेशन कैसा हुआ, एक उच्छेद योजन इज इक्वल टू 1536 प्रमाण अंगुल। ये प्रमाण अंगुल ये सूच्यंगुल है ना, एक सिंगल लाइन की बात है। अब यदि हम इसको योजन को घन योजन करेंगे, घन योजन है एक का घन, तो ये 1536 का भी घन करना पड़ेगा। तो एक उच्छेद घन योजन इज इक्वल टू 1536 का घन इतने प्रमाण अंगुल, या प्रमाण घनांगुल कहो, प्रमाण घनांगुल कहो, 1536 का घन ये प्रमाण घनांगुल इतने हो गए। एक उच्छेद घन योजन इज इक्वल टू 1536 का घन प्रमाण घनांगुल हो गए। बराबर। ये 1536 कहाँ से निकाला वो मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने करके नहीं दिखाया, ये तो अपने को सोचना है ना ऐसा क्यों लिखा। देखो अब हम इसको पढ़ेंगे, ये दो तीन लाइन में फिर पढ़ती हूँ, उदाहरण वाले सेकंड पैराग्राफ बीच वाला। भ्रमर क्षेत्र के योजन में आए हुए घनफल के, ये योजन में आया घनफल यानी उच्छेद योजन में घनफल आया, यानी उच्छेद में घन योजन का प्रमाण आया हमको, 3/8 घन योजन आया था। उसके घनांगुल करने पर इस उच्छेद घन योजन में आए हुए घनफल को 1536 के घन वो कितना आता है उन्होंने करके बताया, 362,38,78,656 से गुणित करने पर प्रमाण घनांगुल होते हैं। अब उसका उदाहरण करके बताते हैं। भ्रमर क्षेत्र का उच्छेद घन योजन में घनफल 3/8 यानी 3/8 उच्छेद घन योजन है। हमने देखा था ना एक घन योजन का प्रमाण कितना है, 1536 का घन, इतने प्रमाण अंगुल है, प्रमाण घनांगुल। तो 3/8 का कितना होगा, तो 3/8 से इसको गुणित करो। तो इसको उन्होंने वो संख्या में बता दिया, फिर उसको 3/8 से भी गुणा करेंगे। देखो वो बताते हैं एक उच्छेद घन योजन के प्रमाण घनांगुल 1536 का घन दैट इज इक्वल टू, वो अभी जो बताए थे इन्होंने 362,38,78,656 उसको 3/8 से गुणा करते हैं तो आगे उसका प्रमाण 135,54,496 प्रमाण घनांगुलों में भ्रमर क्षेत्र का घनफल है। ये इसको वो कहेंगे आप संख्यात घनांगुल है, ख्याल है ना। ये संख्यात समझने से हम कुछ 10-12 नहीं समझे, इसलिए वो करके बताए कितना है, ये संख्यात घनांगुल। और इसको आधा करेंगे वो एवरेज आएगा चतुरिंद्रिय जीवों का, अभी द्विंद्रिय का और अलग निकलेगा। द्विंद्रिय बड़ा होगा कि चतुरिंद्रिय, हाँ द्विंद्रिय बताए कितना, अवगाहना किसकी बड़ी है, हाँ चतुरिंद्रिय की। हम द्विंद्रिय चतुरिंद्रिय में पूछ रहे हैं, दो इंद्रिय की कितनी है टोटल घन योजन में, तो 365 घन योजन आ जाएगी और ये कितना 3/8 घन योजन आ गया है। हम पढ़ेंगे आगे, देखो ये बड़ी अवगाहन कैसे विहार करते होगे ना, ऐसा लगता है शंख विहार करेगा कि नहीं करेगा, द्विंद्रिय है तो करेगा। शंख ने हमें अपने कपाट में रखा हुआ शंख दिखता है, वो नहीं है, वो तो उसका आउटर कवरिंग है, स्केलेटन है उसका, स्केलेटन है उसका, वो हमारी हड्डी अंदर होती है ना और बाहर नरम है, तो इन जीवों का बाहर वो आउटर है, वो आउटर स्केलेटन होता है इनका, और अंदर वो मृदु शरीर वाले वो उसके अंदर रहते हैं, वो चलते हैं। ये बगीचे में वगैरह शंख ऐसे चलते हुए दिखते हैं। देखो ये उदाहरण हो गया, उसका विशेषार्थ नीचे का विशेषार्थ देख रहे हैं। देखो एक उच्छेद योजन में 7,68,000 उच्छेद सूचंगुल होते हैं, वो अभी निकाला था ना हमने 7,68,000। इस नियम से वो कैसे निकले वो भी बताया था, 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक विलस्सी वगैरह वगैरह। इस नियम से एक उच्छेद घन योजन के घनांगुल करने पर उसमें 7,68,000 को 3 बार रखकर परस्पर गुणा करने से जितना लब्ध आएगा उतने उच्छेद घनांगुल होते हैं। ये उन्होंने उसका भी घन करके बताया, हमने इतना लंबा चौड़ा लिया ही नहीं, डायरेक्ट ये सूचंगुल के ही घनांगुल ये सारे प्रमाण करके बताए। इन्होंने क्या किया, वो 7,68,000 का भी घन करके बताया, ख्याल है ना, इतने उत्सेद घनाकुल होंगे। उत्सेद योजन से प्रमाण योजन 500 गुना बड़ा होता है, अतएव इन उत्सेद घनाकुलों के प्रमाण घनाकुल करने के लिए उक्त अंगुलों के प्रमाण में 500 के घन का भाग देने पर यह लंबा चौड़ा गणित हो गया। उसके करने के लिए भी हमने तो डायरेक्ट 500 से भाग दिया था, सूचंगुल के हमने परिवर्तित कर दिए। हाँ उल्टा नहीं, अभी हमारे लिए वो तो लंबा हो गया, इतना ही है तो सीधा है, हमने शॉर्टकट निकाला। घन का भाग देने पर ये तो 362,38,78,656 घनांगुल आ जाते हैं, और वह राशि 1536 के घन प्रमाण पड़ती है। हमने डायरेक्ट उसको 1536 किया, यानी 7,68,000 को ही हमने 500 से भाग दिया, 1536 आ गए। एक योजन के इतने प्रमाण घन अंगुल है, सूचंगुल, तो घनांगुल को उसका घन कर दिया। अब गोमी का आयाम कह रहे हैं, गोमी का आयाम, ये तीन इंद्रियों की बड़ी अवगाहना वाला जीव है। गोमी का आयाम, उसमें तो रक्त बिच्छू बताया था ना, तीन इंद्रियों में रक्त बिच्छू बड़ी अवगाहना वाला, इसका आयाम निकालने में वो आसान होगा शायद। हाँ, रेड स्कॉर्पियन, बड़ी अवगाहना वाले में हमने रक्त बिच्छू को उसका नाम पढ़ा था गोमड़सर में। देखो, गोमी का आयाम उत्सेद योजन के चार भागों में से तीन भाग प्रमाण है, यानी 3/4 योजन चार भागों में से तीन भाग प्रमाण। आयाम लंबाई, यहाँ तो हमने एक योजन देखा था, अभी 3/4 योजन। विष्कम्भ उत्सेद के आठवें भाग प्रमाण, यानी विष्कम्भ उसका आठवां भाग, 3/4 का आठवां भाग, यानी 3/32। और बाहल्य विष्कम्भ से आधा, 3/32 का आधा, 3/64। अभी घनफल इन तीन को गुणा करो आपस में, 3/4 गुणा 3/32 गुणा 3/64। गोमी क्षेत्र का घनफल लाने के लिए इन तीनों के परस्पर गुणित करने पर उत्सेद योजन के घन का संख्यात्मक भाग लब्ध आता है। इसे 1536 के घन से गुणित करने पर गोमी के घन रूप क्षेत्र के प्रमाण घनांगुल आ जाते हैं। देखो उसको करके बताया, गोमी का आयाम 3/4 योजन, विष्कम्भ 3/32 योजन, और बाहल्य 3/64 योजन। हाँ, तो 3/4 और 3/32 को अलग अलग गुणा करके बताया उन्होंने, 9 / 128 इंटू 3/64, 27/81/92। उत्सेद घन योजन आ गई है, 27/81/92 घन योजन, उत्सेद घन योजन गोमी क्षेत्र का घनफल है। अब इसको ये 1536 के घन से गुणा कर दिया उन्होंने, उत्सेद घन योजन है उसको 1536 के घन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर प्रमाण घनांगुल में आएगा। अभी हमने करके देखा था वैसे, तो उसको गुणा करने पर 1,19,43,936 प्रमाण घनांगुलों में गोमी क्षेत्र का घनफल आता है। अब शंख क्षेत्र का घनफल निकालेंगे, 12 योजन आयाम वाले और 4 योजन मुख वाले शंख क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊपर हम गाथा पढ़ेंगे पहले, व्यासम तावत् कृत्वा वदन दलोनम मुखार्ध वर्गयुतम द्विगुणम चतुर्विभक्तम सनाभिकेस्मिन् गणितमाहु। व्यास को उतनी ही बार करके, अर्थात व्यास का जितना प्रमाण है उतनी बार व्यास को रखकर जोड़ने पर, नहीं समझे, चार संख्या होगी मान लेते हैं, चार को चार बार रख कर जोड़ने पर, अभी यहाँ तो 12 योजन है, 12 को 12 बार रखो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना होगा, 12 को 12 से गुणा करो, इतनी होगा ना। हाँ तो ये, बारह बार 12 लिखो और ऐड करो, उसी का अर्थ है 12 को 12 गुणे करो, बारंबारे 44, जो लब्ध आवे उसमें से मुख के आधे प्रमाण को घटाकर, मुख चार योजन है उसका आधा 2 होगा, 144 में से 2 गए 142 रहेंगे, घटाकर मुख के आधे प्रमाण के वर्ग को जोड़ दे, आधे प्रमाण का वर्ग 4 होगा, उसको जोड़ देना, कितना हुआ, हाँ 146। इस प्रकार जो संख्या आवे उसे द्विगुणित करके पश्चात 4 का भाग दे, उससे आधा डायरेक्ट आधे से भाग दो, 146 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो गया, 73। इस प्रकार जो लब्ध आवे उसे शंख का क्षेत्रफल कहते हैं, तो उसको देखेंगे, ये तो क्षेत्रफल हुआ, हो घनफल नहीं हुआ। देखो इस सूत्र से लाकर उस क्षेत्रफल को मुख से हीन उच्छेद सहित उच्छेद के चौथे भाग से गुणित करके, उच्छेद कितना बताया यहाँ, मुख से हीन उच्छेद सहित उच्छेद के चौथे भाग से गुणित करके उच्छेद घनयोजन लाकर और पूर्वोक्त गुणकार से गुणित करने पर घनरूप शंख क्षेत्र के प्रमाण घनाकुल हो जाते हैं। देखो वहाँ नीचे लिखा है, इसमें ये तीसरी जो फुटनोट है उसमें से तीसरी लाइन, वो 73 कैसे आए वहाँ तक तो हमने पढ़ा था, 73 लिखा है ना, 73 वो क्षेत्रफल आया, अभी हमको घनफल निकालना है, तो घनफल के लिए और एक साइड से उसको गुणा करना पड़ेगा, तो उसके लिए कहते आयाम में मुहम सोहिय, आयाम में से मुंह को पहले घटाना, 12 में से 4 गए 8 रह गए, पुनरेवी आयाम सहितम फिर उसमें मिला दो, 8 जो आए उसमें 12 मिला दो तो 20 हो जाएंगे, मुह भजियम मुंह से भाग दो, 20 को 4 से भाग दो तो 5 आ गए, बाहल्यम नायवम ये जो 5 योजन है वो बाहल्य है ऐसा समझना चाहिए, शंखा या रठिये क्षेत्रे यानी वो शंखाकृति क्षेत्र में इतना बाहल्य जानना चाहिए, यानी 5 73 × 5 165 घन योजन द्विंद्रिय जीवों की अवगाहना है, ये बड़ी से बड़ी अवगाहना 365। मैंने कितना बताया, 365 मुझे बताना। देखो आगे लिखते उदाहरण, शंख क्षेत्र का आयाम 12 योजन, मुख 4 योजन, ये हमने करके देखा है अभी 73 कैसे आए, 12 × 12 144, 144 में से मुख का आधा माइनस कर दो तो 142 आए, 142 में वो आधे का वर्ग यानी 4 मिला दो तो 146 आए, उसका 2 गुणा करो 292 आए और उसको 4 से भाग दो तो 73 आ गए। अब उसमें से उसका उच्छेद निकालना है, विषकम बाहल्य निकालना है, उच्छेद नहीं बाहल्य निकालना है, तो 12 में से 4 घटाए यानी आयाम में से उसके मुंह उसका घटाया 8 आए, 12 में 8 मिला है तो 20 आए, 20 को 4 से भाग दिया तो 5 आए, ये उनके सूत्र है विशिष्ट शंखाकृति निकालने के लिए। तो 73 तो हमने क्षेत्रफल निकाला था, उसको 5 से गुणा करेंगे तो घनफल आया 365 उच्छेद घन योजन आ गया, हमने देखा ना द्विंद्रिय की अवगाहना बड़ी है, वहाँ तो 3/4 ऐसा कुछ है, 3 अष्टमांश आई थी भ्रमर की, और यहाँ 365 घन योजन आ गए, शंख क्षेत्र का घनफल है। अब इसको 365 को 1536 के घन से गुणा करेंगे तो उतने प्रमाण घनांगुलों में शंख क्षेत्र का घनफल आता है। ये घना प्रमाण घनांगुलों में आता है, ये लंबी चौड़ी है उसकी, नहीं 1 लाख से नहीं होता है, 57 लाख वो करोड़ हो जाएगा। हाँ, यानी 1322 अबज 71,57,09,440 प्रमाण घनांगुल इतना शंख क्षेत्र का घनफल आता है। अब ये जो महामत्स्य का जो है घनफल वो कल हम निकालेंगे। जावाणी के